العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین دار الافتاء اہل سنت کے سلسلے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم حاضر ہوئے ہیں ایک نئے موضوع کو لے کر اور وہ ایک اہم موضوع کا ایک خاص حصہ ہے اور وہ ہے زکوٰۃ کے جدید مسائل۔ زکوٰۃ سے متعلق مسائل بہت سارے وہ ہیں جو کہ ہم سن چکے ہیں، لیکن بعض وہ مسائل ہیں جو کہ اگر ہم دیکھیں تو دنیا جدت کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو اس میں بھی بہت ساری چیزوں کے بارے میں بندہ اس بات میں جاننا چاہتا ہے کہ کیا اس میں بھی زکوٰۃ ہوگی، ہوگی تو کس طرح ہوگی۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے بھی طریقے بہت سارے ایڈوانس جو ہے وہ آ گئے ہیں، بینک کے ذریعے آپ ادا کر دیتے ہیں اور مختلف جو ہے وہ منی ٹرانسفر کے جتنے بھی ذرائع ہیں ان کے ذریعے سے آپ زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ یوں ہی زکوٰۃ کے جو اموال ہیں وہ بھی بڑے جو ہے وہ جدید طور پر جو ہے وہ آ چکے ہیں، بہت سارے وہ ہیں کہ جن کا اپنا حصہ وجود نہیں ہے، ان کا ڈیجیٹل جو ہے وہ وجود دنیا کے اندر پایا جاتا ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ جسے آپ کہہ سکتے ہیں، سافٹ ویئر کی دنیا ہے، آئی ٹی کی دنیا ہے اور بہت کچھ۔ تو وہ مسائل جن کا تعلق جدید کاروبار کے ساتھ ہے یا جدید جو ہے وہ مال کے ساتھ ہے، ان کے اوپر آج جو ہے وہ ہم ڈسکس انشاءاللہ عز و جل کریں گے اور پھر اس کے اوپر ہم آپ کی کالز کو بھی شامل سلسلہ کریں گے۔ ابتداء درود پاک کی فضیلت کی طرف بڑھتے ہیں۔ چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علیہ صلاتن۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ کل قیامت میں میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ زکوٰۃ کی اگر ہم ادائیگی کی بات کریں تو ادائیگی مختلف طریقوں سے ہوتی ہے۔ آپ خود جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں کہ بائی ہینڈ جو ہے وہ کسی مستحق کے زکوٰۃ کو آپ دے دیتے ہیں، یا آپ کسی کے ذریعے سے ادا کرواتے ہیں، آپ کسی شخص کو کہہ دیتے ہیں کہ میری یہ زکوٰۃ آپ جو ہے وہ ادا کر دیجئے گا۔ اب تک تو یہ دو طریقے جو ہے وہ اختیار ہوتے نظر آ رہے تھے اگر ہم پچھلے مسائل کی بات کریں، لیکن فی زمانہ جدیدیت کے دور کے اندر آن لائن جو ہے وہ ایک بہت طریقہ جو ہے وہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بہت سارے لوگ جنہوں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے یا جناب مستحق لوگوں تک جو ہے وہ چیزیں پہنچانی ہیں یا مال زکوٰۃ جو ہے وہ پہنچانا ہے، ان کے پاس جو ہے وہ جانے کا ذریعہ نہیں ہے یا وہاں پہنچنے کا ذریعہ نہیں ہے، وہ آن لائن زکوٰۃ ادا کریں گے تو کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ جی ہاں، اگر آپ اپنے اکاؤنٹ سے مستحق کے زکوٰۃ کے اکاؤنٹ میں رقم ٹرانسفر کر دیتے ہیں تو جیسے ہی رقم اس کے اکاؤنٹ میں پہنچے گی تو وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ مگر یہاں ایک بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ بسا اوقات بینک جو ہے وہ جب ٹرانسفر کرتا ہے یا کوئی بھی ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے آپ ٹرانسفر کر رہے ہیں، اگر وہ کچھ چارجز وصول کرتا ہے تو وہ چارجز آپ زکوٰۃ کی مد میں شمار نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ آپ نے 1 لاکھ روپے کی زکوٰۃ ٹرانسفر کی اور اس کے اوپر چارجز جو ہے وہ کٹے مثلاً 5,000 روپے۔ اب دو چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ 1 لاکھ روپے دیتے ہیں اور کہتے ہیں چارجز اسی میں سے کاٹ لینا اور یہ رقم ٹرانسفر جو ہے وہ کر دینا، تو اب جو مستحق کے زکوٰۃ کے اکاؤنٹ میں رقم پہنچتی ہے وہ 95,095,000 روپے پہنچتی ہے، 5,000 روپے مثلاً بینک یا وہ آپ نے جو بھی سروس لی اس کے چارجز کٹ جاتے ہیں۔ تو زکوٰۃ آپ کے پاس سے تو 1 لاکھ گئے، لیکن وہاں پہنچے کتنے مستحق کے زکوٰۃ کو؟ وہ 95,095,000 پہنچے، تو زکوٰۃ جو آپ کی ادا ہوئی وہ 95,000 ادا ہوئی، 5,000 روپے جو چارجز کی مد میں کٹے وہ آپ کی اپنی جیب سے گئے، وہ مستحق زکوٰۃ کے جو ہے وہ جیب سے नहीं जाएंगे। तो लिहाजा अगर आप अपनी जकात जो है वो 1 लाख आपने अदा करनी है तो फिर आपको 1,05,000 या उससे ज्यादा पैसे देने होंगे कि चार्जेस कटने के बाद, चार्जेस डिडक्ट होने के बाद मुस्तहिक के जकात के अकाउंट में जो जितनी रकम पहुंचेगी उस रकम का एतबार होगा, वो आपकी जकात बनेगी, उस एतबार से जकात की अदायगी होगी। एक और मसला जकात से मुताल्लिक है कि लोग राशन जो है वो जकात की मद में जो है वो आगे देते हैं, तो बहुत सारे दुकानदार ऐसे भी हैं जो ये चाहते हैं कि यार राशन तो लोग तकसीम कर ही रहे हैं, तो वो राशन तकसीम करने वालों के साथ अपना हिस्सा मिलाते हुए भी वो ये चाहते हैं कि ऐसा करें कि अगर आपने राशन हमसे खरीदना है तो हम आपको डिस्काउंट में जो है वो राशन दे देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर ये जो है वो आटे का बैग है और ये 400 रुपए का है, तो हम आपको 350 रुपए का जो है वो दे देते हैं, और ये 50 रुपए हमारी ज़कात के तौर पर जो है वो आप शुमार करके मुस्तहिक लोगों में जो है वो तकसीम कर दीजिए। तो ऐसा करने से क्या ज़कात अदा होगी या नहीं होगी, यहाँ ये बात याद रखना ज़रूरी है कि ज़कात की अदायगी किस तरह होती है। ज़कात की अदायगी के लिए शर्त ये है कि आप मुस्तहिक के ज़कात को उस माल का मालिक बनाएं और उस पर उसे कब्जा दिलाएं। फकत मनफियत का मालिक करना, इससे ज़कात अदा नहीं होती। मनफियत का मालिक करना किस तरह, मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स अपना मकान जो है वो किसी को किराए पे दे देता है मुस्तहिक के ज़कात को कि आप 1 महीने या 1 साल इसमें बगैर किराए के रहें, मेरी तरफ से आपसे मैं कोई किराया नहीं लूंगा, और वो ये कहे, वो यूं शुमार करे, मिसाल के तौर पे उसके उस मकान का किराया आता है 10,000 रुपये, वो तो यूं शुमार कर ले कि भाई जो मैंने इसको रहने के लिए दिया है तो 12 महीनों के हिसाब से ये 1,20,000 रुपये मैं ज़कात की मद में शुमार करता हूँ और इस मुस्तहिक के ज़कात को मुफ्त में दे देता हूँ। तो इस तरह करने से उसकी ज़कात अदा नहीं होगी। किराया बिल्कुल माफ़ करना चाहिए, अच्छी बात है कि इस जो है वो कड़े वक्त के अंदर मुसलमान का साथ देना चाहिए, उसकी मदद और खैरख्वाही करनी चाहिए, लेकिन अगर किराए की मुआफी से आप जकात की अदायगी करना चाह रहे हैं तो वो किराए की मुआफी से अदा नहीं होगी, जकात आपको अलहदा से अदा करनी होगी। जैसे राशन का हमने मसला बताया कि अगर कोई शख्स मुसलमानों को सस्ते दामों में माल दे देता है तो उससे जकात अदा उसकी नहीं होगी, क्योंकि वो उस माल के ही पैसे कम शुमार कर रहा है, वो अलग से कुछ पैसों का मालिक नहीं बना रहा सामने मुस्तहिक के ज़कात को। हाँ, उसका दुरुस्त तरीका ये हो सकता है कि वो मसलन 400 का बैग है तो वो 400 का ही बेचे, और जब वो उन पैसों के ऊपर कब्जा कर ले तो अब 50 रुपये उसे वापस कर दे कि ये मेरी तरफ से आपके लिए तोहफा है। अभी जो 50 रुपये कब्जा करने के बाद उसने सामने वाले को दिए, अगर इसमें ज़कात की नियत कर लेता है और सामने वाला मुस्तहिक के ज़कात है तो यूँ ज़कात अदा हो जाएगी। या यूँ भी हो सकता है कि आप जो है वो 10 किलो आपने जो है वो आटा दिया और उसके बाद उसके आपने पूरे पैसे जो है वो चार्ज जो है वो कर लिए, और फिर आपने 1 किलो आटा अपनी तरफ से दे दिया कि ये 1 किलो आटा मेरी तरफ से आपके लिए तोहफा है। तो अब अगर मुस्तहिक के ज़कात है सामने वाला और आपने ज़कात की नियत से दिए, अगरचे तोहफा कह कर दिए, तो ज़कात अदा हो जाएगी। यूं ही जो मालिक मकान हैं अपने किराएदारों के हवाले से, तो अव्वलन तो ये है कि नफली अतियात से ही या वैसे ही सवाब की नियत से जो है वो कर रहे हैं तो बिल्कुल करें, लेकिन अगर कोई वाकई ऐसा है कि वो ये चाहता है कि मेरे पास और भी इस वक्त जरिया आमदन नहीं है, मुझे ज़कात भी अदा करनी है, तो क्या इस तरह हो कि मैं अपने किराएदारों का किराया भी मुआफ़ कर दूं और मेरी ज़कात भी अदा हो जाए, तो उसका ये तरीका हो सकता है कि वो ज़कात की मद में मसलन 10,000 रुपये अगर किराया है वो किराया उसको दे दे कि ये मेरी तरफ से आपको तोहफा है, और जब ये उसको आपने अपनी तरफ से तोहफा कहकर जो है वो दे दिया, अब आप उससे जो ये कह दें कि आप मुझे जो है वो मेरा किराया जो है वो अदा कर दें, तो वो जो 10,000 रुपये तोहफे की मद में किराएदार ने वसूल किए वो वही पैसे मालिक मकान को किराए की मद में अदा कर दे। तो यूं जो मालिक मकान ने पहले दिए उससे ज़कात अदा हो गई, और फिर किराएदार ने कब्जा करके वापस मालिक मकान को किराए की मद में दिए तो किराया भी अदा हो गया, तो गोया के किराएदार के ऊपर किराए की अदायगी का बोझ ना पड़ा, बल्कि वो मालिक मकान की तरफ से फराहम करदा जकात की रकम से ही उसका जो है वो किराया भी अदा हो गया और मालिक मकान की जकात भी अदा हो गई। तो ये सूरतें इख्तियार की जा सकती हैं कि जिनको सामने रखते हुए आप जो है वो अपनी जकात दुरुस्त तरीके से अदा कर सकेंगे। आइए बढ़ते हैं आपकी कॉल्स की तरफ और उन्हें शामिल सिलसिला करते हैं। जी कॉल्स,
मैं मुफ्ता से पूछना चाह रहा था कि क्या जो जकात जो हमारे हम मैं बैंक में जॉब करता हूँ, मुझे प्रोविडेंट फंड मिला था 2 लाख रुपया, क्या उसपे मैं जकात वाजिबुल अदा है, मैं दे सकता हूँ जकात उसमें?
जी मजीद कौन?
मेरा मुफ्ती साहब की बारगाह में सवाल ये है कि अगर किसी पर जकात फर्ज हुई और वो उसका इंतकाल हो गया, तो उसके इंतकाल पर उसकी जकात जो फर्ज हुई है वो फर्ज रहेगी या नहीं रहेगी?
जी मजीद कौन?
सर मेरा यह सवाल है कि मेरी जो सैलरी है वो 95,000 है, जिससे मैं अपने भाई की भी हेल्प करता हूँ, अपनी सिस्टर को भी मैं मंथली 10,000 देता हूँ, तो क्या मुझ पर ज़कात जो है वो अलग से देनी पड़ेगी या फिर इसी में ही हो जाएगी?
जी, पहला सवाल ये है कि बैंक की नौकरी करते हैं या प्रोविडेंट फंड में जो रकम जमा हो रही है उस पर ज़कात होगी या नहीं, ये भी एक जदीद मसला है। अगरचे सालहा साल से जो है वो राइज है, इमाम अहले सुन्नत अलैहि रहमा इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमा ने अपने फतावा रज़विया में भी इसका जवाब इरशाद फरमाया है और दीगर उलमा ने भी फरमाया है कि प्रोविडेंट फंड या जीपी फंड या डीएसपी फंड, मुख्तलिफ जो है वो नाम होते हैं, कि ये वो फंड है जो कि मुलाजिम की तनख्वाह से कुछ ना कुछ हिस्सा कटता रहता है और कट कर वो जमा होता रहता है और फिर उसमें पार्टिसिपेट करता है बैंक या इदारा या हुकूमत उतना ही शेयर या उससे कम, फिर इन दोनों पैसों को उठाकर वो रख देता है बैंक में सूद पर और बैंक उसके ऊपर सूद जो है वो अदा करता है और ये पैसे जमा रहते हैं और जब मुलाजिम अपनी मुद्दत मुलाजमत से रिटायर्ड होता है तो उसे ये सारा पैसा महा सूद जो है वो वापस मिलता है। सबसे पहली बात तो ये कि इन फंड का हुक्म क्या है। अगर तो ये फंड जो है वो कंपलसरी है किसी जॉब में, मिनिमम मिकदार इतनी जमा करवाना कटवाना ही जरूरी है, तो आप कटवा सकते हैं, मगर नियत ये रखें कि इसके ऊपर जो भी मुझे सूद मिलेगा मैं वो मुस्तहिक बैतुल माल तक पहुंचाऊंगा, जबकि वो सरकारी मुलाजिम है। अगर सरकारी मुलाजिम नहीं है और तो भी कंपलसरी है, तो उस सूरत में वो मुस्तहिक जकात तक पहुंचाने की जो है वो नियत करे और तौबा भी जो है वो करता रहे और जब मिले तो फिर इसके मुताबिक ही अमल करें, नंबर एक ही। दूसरा ये कि अगर कंपलसरी नहीं है तो फिर ऑप्शनल तौर पर इसको इख्तियार करना ये जायज नहीं है, क्योंकि इसमें सूद की शर्त पाई जा रही है। तीसरी बात ये है कि बाज़ इदारों में मिनिमम तो कंपलसरी होता है, मैक्सिमम ऑप्शनली होता है कि जनाब आप मिनिमम इतना तो कटवाएंगे ये जरूरी है और मैक्सिमम आपके लिए ऑप्शनल है, आप जितना चाहें कटवा लें। तो जहां मिनिमम कंपलसरी है तो वहां मैक्सिमम की तरफ बढ़ने की इजाजत नहीं होगी, जितना कंपलसरी है फकत उतने की ही इजाजत होगी। ये था फंड का हुक्म। अब बात ये रही कि उस पर जकात होगी या नहीं। जी हाँ, जो आपकी रकम वहां जमा हो रही है उसके ऊपर जकात होगी। कब? जबकि वो रकम खुद निसाब की मिकदार को हो, 52.5 तोला चांदी की मालियत को पहुंच रही हो, या वो खुद तो नहीं पहुंच रही लेकिन कुछ वहां पर जमा है, कुछ आपके पास है माले नामी, इन दोनों को प्लस करें तो वो निसाब की मिकदार को पहुंच जाता है, तो भी जकात लाजिम होगी। 14 अप्रैल बरोज मंगल को कराची में तकरीबन 50,925 रुपये निसाब था चांदी का, 52.5 तोला चांदी की कीमत 50,925 रुपये अखबार के मुताबिक जो है वो है। तो ये निसाब आप देखेंगे। अब जो रकम आपके पास हाथ में मौजूद है उसकी जकात तो आप पर अभी लाजिम होगी जब साल गुजर गया, और जो रकम आपकी वहां पर फंड में जमा है जकात तो उसकी भी साल ब साल आप पर लाजिम हो रही है, जबकि वो निसाब की मिकदार खुद है या दूसरे माल से मिलकर है। हाँ, अलबत्ता यहाँ शरीयत मुतहरा आपको ये सहूलत देती है कि आप उस रकम की जकात अभी अदा ना करें, बल्कि जब वो माल आपको मिले तो फिर आप उसकी जकात अदा कीजिएगा, लेकिन जब मिलेगा तो फिर आपको पिछले सालों की भी जकात अदा करनी होगी। तो ये था इसका मसला कि फंड के ऊपर जकात किस तरह हो। बेहतर यही है तो उस फंड की ज़कात भी आप साल ब साल ही जो है वो अदा करते रहें, ताकि बाद में बहुत सारी ज़कात जमा ना हो जाए कि जब बहुत सारा माल इंसान को एक साथ निकालना पड़े तो बस अवकाश शैतान जो है वो उसे वसवसे डालता है और उसे उस फर्ज की अदायगी में रुकावट बनने की कोशिश करता है। तो इंसान को चाहिए कि माल की मोहब्बत को दूर करने के लिए, हुक्म शरीयत पर अमल करने के लिए बेहतर ये है कि हाथों हाथ हर साल ही उसकी ज़कात निकालते रहे। हमारा दूसरा सवाल था कि किसी शख्स का इंतकाल हो गया, उस पर ज़कात थी, तो क्या वो ज़कात उस पर फ़र्ज है? ज़कात तो देखें उसके ऊपर फ़र्ज थी और बिला उज़्रे शरई अगर उसने अदा नहीं की तो वो गुनाहगार होगा, बल्कि ऐसे शख्स पर लाजिम है कि वो अपने मर्जुल मौत में वो अपने वुरसा को वसीयत करे कि उसके माल से उसकी ज़कात की रकम अदा करें। ये वसीयत करना उसके ऊपर वाजिब है और वुरसा फिर जो है वो तिहाई माल में से, तो बिल्कुल उसकी वसीयत तिहाई माल में पूरी करेंगे और तिहाई से ज़्यादा अगर बन रही हो तो फिर वुरसा अगर राज़ी हो तो वो भी अदा कर सकते हैं। अलबत्ता अगर किसी शख्स ने वसीयत नहीं की और उसके ऊपर ज़कात की रकम थी तो अब वुरसा को चाहिए कि अपने मरहूम के जो है वो इस मामले से खलासी के लिए उसकी जो भी ज़कात की रकम बनती है तो जो बालिग वुरसा हैं उनका जो हिस्सा बनता है वो उसमें से उसकी ज़कात की रकम जो है वो अदा कर दें, ताकि उनका जो मरहूम जो है वो रिश्तेदार है, वालिद है, वालदा है, बहन भाई जो भी है, तो वो इस मामले से अल्लाह तबारक व ताला के हाँ पकड़ से जो है वो बच जाए। तीसरा सवाल है कि सैलरी है और उससे बहन भाइयों की भी मदद करते हैं तो क्या ज़कात अब भी देनी होगी? ज़कात जब आप ज़कात की नीयत से निकालते हैं तो अदा होती, अगर आप वैसे ही लोगों की मदद कर रहे हैं तो उससे ज़कात अदा नहीं होती, नंबर एक। नंबर दो ये कि ज़कात मुस्तहिक ज़कात को देने से अदा होती है, तो मुस्तहिक ज़कात नहीं है उसकी आप मदद कर रहे हैं तो मदद करने का सवाब ज़रूर मिलेगा आपको लेकिन ज़कात अदा नहीं होगी। तो लिहाजा अगर आपने ज़कात की नियत से अपने बहन भाई को दिया और वो आपके बहन भाई मुस्तहिक ज़कात भी हैं तो ज़कात अदा हो गई, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, ज़कात की नियत से नहीं दिया या ज़कात की नियत से दिया लेकिन वो मुस्तहिक ज़कात नहीं है तो फिर ज़कात अदा नहीं होगी। तो हाँ, अलबत्ता आइंदा के लिए आप देना चाहें तो आप ये नियत जो है वो कर सकते हैं, ज़कात की नियत। और ज़कात की नियत दिल में होना ज़रूरी है, कह कर देना ज़रूरी नहीं है कि ये ज़कात है, बल्कि अगर वो मुस्तहिक के ज़कात हैं कि उनकी मिल्कियत में 52.5 तोला चांदी की मालियत के बराबर हाजत असलिया से ज़ायद माल नहीं है तो आप उन्हें तोहफ़ा कहकर भी दे सकते हैं। मैसेजेस भी हैं, हम उन्हें भी शामिल सिलसिला करते हैं। सवाल ये है कि जनाब 1000 रुपये पर कितनी जो है वो ज़कात बनेगी? ज़कात जो है वो 2.5% लाजिम होती है, 40वां हिस्सा जो है वो ज़कात लाजिम होती है। 1 लाख के ऊपर ज़कात जो है वो 2500 रुपये बनती है। एक सवाल ये है कि क्या घर में नमाज की जमात के लिए अजान व इकामत का क्या हुक्म होगा और क्या इस्लामी बहनें जमात के साथ नमाज अदा कर सकती हैं? जी हाँ, घर में भी अगर नमाज अदा की जा रही है तो अजान व इकामत जो है वो कही जाएगी, और अगर अजान नहीं कही तो महल्ले की अजान भी काफ़ी है, अलबत्ता इकामत कही जाएगी। इस्लामी बहनें जमात खुद करवाएं कि औरत ही इमाम हो तो ये जायज़ नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर कोई महरम जो है वो इमाम बनता है मर्द और उसके अंदर शरायत इमामत भी पाई जाती हैं और उसके पीछे इस्लामी बहनें या घर के दीगर बच्चे और बहनें, इस्लामी बहनें वगैरह इक्तिदा करती हैं तो जायज़ है। मगर ये बात याद रहे कि जब मर्द इमाम मर्दों की इमामत करवाता है तो उसे इमामत की नियत करना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन अगर उसे औरतों की इमामत करवानी है या औरतों और मर्दों दोनों की करवानी है तो उसे नियत करनी होगी कि मैं औरतों की भी इमामत करवा रहा हूँ। और नियत के लिए ख़ास अल्फाज ज़रूरी नहीं, दिल में फ़कत ये नियत हो कि मैं औरतों की भी इमामत करवा रहा हूँ तो ये काफ़ी है। एक सवाल ये है कि क्या प्लॉट्स पर भी ज़कात लाजिम है? ज़कात माले नामी पर होती है, माले नामी सोना, चांदी, करेंसी, माले तिजारत, करेंसी के साथ आप प्राइस बॉन्ड भी ले सकते हैं, माल तिजारत और वो चराई पर छोड़े जाने वाले जानवर हैं जिनको साइमा जानवर कहा जाता है, इन पर ज़कात जो है वो लाजिम होती है। अब जो प्लॉट है वो ना सोना है ना चांदी है, ना प्राइस बॉन्ड है, ना करेंसी है और ना ही जानवर है। अब क्या हो सकता है, अब प्लॉट जो है वो एक ही चीज़ हो सकता है, या तो माल तिजारत होगा या नहीं होगा। माल तिजारत कोई चीज़ कब होती है कि जब आप उस चीज़ को ख़रीदते वक्त ये नियत करते हैं कि मैंने ये बेचने के लिए ख़रीदी। तो लिहाजा अगर आपने प्लॉट बेचने के लिए ख़रीदा है तो ज़कात लाजिम होगी, और अगर बेचने के लिए नहीं ख़रीदा तो ज़कात लाजिम नहीं होगी। एक सवाल ये है कि अगर कपड़े ज़कात में दें तो कितने सूट जो है वो देंगे तो ज़कात अदा होगी। देखिए, ज़कात में सोने और चांदी के अंदर जब से की ज़कात आप अदा करते हैं तो आप वज़न के एतबार से भी अदा कर सकते हैं, लेकिन जब आप इसके अलावा किसी और चीज़ की ज़कात अदा करते हैं तो फिर कीमत का एतबार किया जाता है। मसलन आप पर सोने और चांदी किसी के पास है और वो उसकी ज़कात अदा करना चाहता है, और मसलन उसके ऊपर सोने चांदी की वज़न के एतबार से ज़कात बनती है 2 तोला। अब वो चाहता है कि मैं सोना तो नहीं दूं, मैं इसकी जगह पे पैसे दे दूं, तो उसे ये कहा जाता है कि आप 2 तोला सोने के पैसे अदा कर दीजिए। वो चाहता है कि मैं कपड़े दे दूं, तो उसे ये कहा जाएगा कि 2 तोले सोने की मालियत के बराबर के कपड़े आप ज़कात में दे दें। तो कोई दूसरी चीज़ देंगे तो उतनी मालियत की आप देंगे। तो लिहाजा कपड़े वगैरह दे रहे हैं तो उनमें भी, कपड़े दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, कोई भी चीज़ दे रहे हैं तो उसमें मालियत देखी जाएगी कि वो जो चीज़ आप दे रहे हैं वो उतनी मालियत की हो जितनी आप पर ज़कात लाजिम हो रही है। अब मालियत कौन सी ली जाएगी, उस वक्त जब आप ज़कात अदा कर रहे हैं उस चीज़ की मार्केट वैल्यू क्या है। वो चीज़ आपको चाहे सस्ती पड़ी या महंगी पड़ी उसका एतबार नहीं है, बल्कि मार्केट वैल्यू का एतबार होगा। अगर आपने वो चीज़ ख़रीदी थी महंगी, 500 रुपये का सूट ख़रीदा था, लेकिन अब हालात की वजह से उस सूट की वैल्यू हो गई 400, तो अब आप अदा करेंगे तो आपके 400 रुपये की ज़कात अदा होगी, 400 रुपये ज़कात में अदा होंगे, 500 नहीं। और आपने लिया था 500 का और अब मार्केट हाई हो गई, वही सूट अब मार्केट में 600 रुपये का है, तो अब आप अदा करेंगे तो 600 रुपये जो है वो गोया कि आपने ज़कात के अंदर जो है वो अदा किए। यही हर चीज़ के अंदर जो है वो हिसाब किताब किया जाता है। एक और सवाल ये है कि पार्टनरशिप पे जो है वो कॉलेज बनाया था और 3 इयर्स हो गए हैं, ज़कात देनी है। देखिए, कॉलेज बनाया है तो कॉलेज में जो इमारत बनाई है आपने या स्कूल बनाया है और उसमें इमारत बनाई है तो इमारत के ऊपर तो ज़कात नहीं, कि वो बेचने के लिए नहीं बनाया, बल्कि वो तो उसके अंदर तालीम देने के लिए वो जगह बनाई गई है। और जो उसका फर्नीचर है उसके ऊपर भी ज़कात नहीं है कि वो बेचने के लिए जो है वो नहीं है। अब फिर किस चीज़ के ऊपर ज़कात होगी, तो यहाँ दर हकीकत जो आप सर्विसेज देते हैं उसके बदले में जो आपको फीसेज हासिल होती हैं, उन फीसेज के ऊपर जो है वो ज़कात होगी। और वो कैश करेंसी जो है वो आपके पास है तो उसमें जिस पार्टनर का जितना हिस्सा है वो उस एतबार से जो है वो उसकी ज़कात अदा करेगा। जी, मजीद कॉल की तरफ बढ़ते हैं। जी, कॉल दीजिए।
मसला ये ज़कात के बारे में कि ये मस्जिद से जो है ना ज़कात हो सकती है, मस्जिद की तामीर है तो उस पे ज़कात दे सकती है मैं ये।
जी, मजीद कौन?
सर, एक औरत है का शोर है जो उसने 2 शादियां की हुई है, तो उसकी 3 बेटियां हैं, बड़ी जो है वो तलाक याफ्ता है, छोटी बेटी जो पढ़ाती है उससे उसका घर का निजाम चलता है, उसका जो शोर है उनको खर्चा नहीं देता, तो क्या उनको ज़कात दे सकते हैं?
बंदे ने अगर एक मकान लिया हुआ है वो किराए पे दे दिया है और अपने लिए किराए पे ले लिया है, क्या उस पे ज़कात है?
जी, पहला सवाल ये कि मस्जिद पर ज़कात, मस्जिद की तामीर पे ज़कात लग सकती है या नहीं। ज़कात जो है वो मुस्तहिक के ज़कात को मालिक बनाने से अदा होती है, मस्जिद मुस्तहिक के ज़कात नहीं है, लिहाजा मस्जिद पर डायरेक्ट ज़कात नहीं लग सकती। یوں ہی مسجد کی تزئین و آرائش کے لیے ہیلہ کرنے کی بھی زکوٰۃ کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر واقعی کسی جگہ پر مسجد کی جو تعمیر ہے زینت و آرائش کے علاوہ اس تعمیر کے لیے حاجت ہے کہ عام طور پہ اتنا چندہ ہو نہیں پاتا جس سے تعمیر مسجد کی کمپلیٹ کی جا سکے، تو پھر وہاں پر زکوٰۃ ہیلہ ہو کر خرچ ہو سکتی ہے، ڈائریکٹ زکوٰۃ نہیں لگتی۔ ہیلہ یوں ہوگی کہ وہ زکوٰۃ لے کر کسی مستحق کے زکوٰۃ کو دے دی جائے گی، کسی شرعی فقیر کو دے دی جائے گی، وہ شرعی فقیر قبضہ کر لے گا تو زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اب وہ شرعی فقیر اپنی طرف سے مسجد کو ڈونیٹ کر دے گا، تو یوں جو ہے وہ ہیلہ ہو گیا، زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی، اور جو شرعی فقیر نے اپنے پاس سے دیا وہ نفلی عطیہ ہوا، نفلی عطیہ مسجد کے اندر لگ سکتا ہے، اور اس میں شرعی فقیر کو بھی اتنا سارا چندہ مسجد کو دینے کا ثواب ملا، اور جس نے زکوٰۃ دی تھی اس مقصد کے لیے اس کو زکوٰۃ دینے کا بھی ثواب ملا، اور تعمیر مسجد کا بھی انشاءاللہ اسے ثواب ملے گا۔ مگر یہ معاملہ جو شرعی ہیلے کا ہے یہ ہر جگہ پر درست طریقے سے ہو یہ ضروری نہیں کہ اس کے مسائل عام طور پر جو عام مسجد انتظامیہ کے افراد ہوتے ہیں، جو علماء نہیں ہوتے، انہیں معلوم نہیں ہوتی۔ تو اگر کوئی مسجد انتظامیہ کو یہ کام کرنا ہو تو پہلے وہ اس بارے میں شرعی طریقہ کار اپنے امام صاحب کے ساتھ جو ہے وہ دارالافتاء اہل سنت سے معلوم کر لیں، اور پھر کسی عالم دین یا اپنے امام صاحب کی نگرانی میں اس پورے عمل کو جو ہے وہ درست طریقے سے کریں، تاکہ کسی بھی جگہ پر غلطی نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی کسی بھی لا علمی یا غلط فہمی کی وجہ سے بیچارے زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ ضائع ہو جائے، کہ اس کا گناہ آپ کے سر پر آئے گا کہ اس نے آپ کو جو ہے وہ اس بات کا امین بنایا تھا کہ آپ اس کی زکوٰۃ درست طریقے سے ادا کریں، جبکہ آپ نے کسی غلطی کی وجہ سے زکوٰۃ درست ادا نہیں کی، تو اس بیچارے کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، تو گناہگار آپ ہوں گے اور تاوان بھی آپ پر لازم ہوگا۔ یوں ہی جو لوگ دینے والے ہیں وہ بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ ایسی جگہوں پر ہی زکوٰۃ دیں جہاں پر وہ سمجھتے ہوں کہ سامنے ایسے افراد ہیں جو کہ درست طریقے سے شرعی احکام کو جان کر اور اس کے مطابق ہی عمل کرتے ہوئے اس کی زکوٰۃ کا درست ادائیگی کا ہیلہ یا طریقہ اختیار کریں گے، ورنہ اگر فقط اپنے ذمے سے آپ نے بوجھ اتار دیا کہ جناب میں نے تو دے دی زکوٰۃ، اب وہ جانے ان کا کام، جانے غلط کریں گے، ان کا معاملہ ہوگا، تو اس سے آپ بھی بری ذمہ نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ نے جو زکوٰۃ دی ہے وہ زکوٰۃ دی نہیں ہے بلکہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے انہیں وکیل بنایا ہے۔ ایک مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ اپنے مال سے نکال دے، نکالنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، زکوٰۃ جو ہے وہ مستحق تک پہنچانا یہ ذمہ داری ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی مستحق کی ملکیت میں جانے سے ہی ہوتی ہے۔ دوسرا سوال یہ کہ ایک عورت ہے اور غریب ہے اور شوہر اس کے اخراجات پورے نہیں کرتا، تو کیا اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مستحق کے زکوٰۃ ہونا ضروری ہے، اور اس کی جو ابتدائی شرط ہے مال کے اعتبار سے کہ اس شخص کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر حاجت اصلیہ سے زائد مال نہ ہو۔ اب اگر عورت ہے، گھر چلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، لیکن سونے کی چوڑیاں ہاتھ میں پہنی ہوئی ہے جن کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچتی ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور زیور ہے جو کہ اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے رکھا ہوا ہے اس نے، تو اس صورت کے اندر آپ انہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ البتہ اگر وہ عورت یا اس کی بیٹیوں میں سے کسی کی بھی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر حاجت اصلیہ سے زائد مال نہیں ہے اور وہ ہاشمی بھی خاندان سے تعلق نہیں رکھتی، تو انہیں آپ پھر زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ پھر جس کو دے رہے ہیں اس کا اعتبار ہوگا، عورت اور اس کی بیٹیاں ان سب کی مالیت نہیں دیکھی جائے گی، بلکہ عورت کی مالیت الگ دیکھی جائے گی، اس کی بیٹی کی ملکیت میں جو مال ہے، تو ہر فرد کی ملکیت میں جو مال ہے اس کو آپ جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اگر اس عورت کو دے رہے ہیں تو اس عورت کی ملکیت میں جو مال ہے اس کو آپ جو ہے وہ دیکھیں گے، اگر اس کی بیٹی کو دے رہے ہیں تو جس بیٹی کو دے رہے ہیں اس کی ملکیت میں جو مال ہے اس کے سامنے رکھیں گے، اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر نہیں ہے تو آپ اسے جو ہے وہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خود کرائے پہ رہ رہے ہوتے ہیں لیکن کرائے پر اپنا مکان بھی دیا ہوا ہوتا ہے، بعض لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنا مکان کرائے پر دیا ہوا ہے اور خود بھی کرائے پر رہ رہے ہیں، تو کیا انہیں کرائے پر زکوٰۃ دینی ہوگی؟ اگر تو وہ جو کرایہ ان کے اس مکان سے آ رہا ہے अगर वो उनकी हाजत असलिया में ही खर्च हो जाता है, मसलन वो किराया वहाँ से लेते हैं और यहाँ पर अपने मालिक मकान को अदा कर देते हैं, या वहाँ से लेके कुछ उसमें से इजाफी डालकर अदा कर देते हैं, या वहाँ से किराया लेते हैं कुछ उसमें से अपना किराया अदा करते हैं, कुछ से अपना घर का अखराजात चलाते हैं, तो अगर हाजत असलिया में खर्च कर देते हैं तो उस सूरत में उस पर ज़कात नहीं है। और अगर वो किराया हाजत असलिया के अलावा जो है वो कुल या कुछ बचता है और वो खुद या दूसरे माल से मिलकर निसाब की मिकदार को पहुंचता है, तो फिर साल पूरा होने पर दीगर शराइत ज़कात पाई जाएंगी तो ज़कात लाजिम होगी। मैसेजेस को भी हम मजीद शामिल सिलसिला करते हैं। एक सवाल ये है कि जो पैसे उधार लिए हुए हों क्या इन पैसों पर भी ज़कात देंगे? जो आपके ऊपर कर्ज होता है उसके ऊपर ज़कात नहीं होती, बल्कि आपका जो कुल माल होता है आप उसमें से कर्ज को माइनस करते हैं और बकिया माल अगर निसाब की मिकदार को पहुंचता है तो उसके ऊपर आप ज़कात अदा करते हैं। अलबत्ता जो कर्ज आपने किसी को दिया हुआ है उसके ऊपर ज़कात लाजिम होगी जबकि वो निसाब की मिकदार हो खुद या आपके दूसरे माल से मिलकर। हाँ, जो आपने किसी दूसरे को माल उधार दिया हुआ है उसकी ज़कात लाजिम तो हर साल होगी, अदायगी उस वक्त लाजिम होगी जब वो माल आपको पूरा मिल जाए या वो माल आपको जो है वो निसाब की मिकदार के पांचवा हिस्सा, यानी तकरीबन निसाब जो 52.5 तोला चांदी है इसका 20% जब आपको अगर मिलता है, यानी अगर किस्त वार आ रहा है तो 20% मिल जाएगा, तो इस 20% की ज़कात आप पर लाजिम हो जाएगी अदा करना। फिर 20% मिल गया तो फिर ज़कात की अदायगी लाजिम हो जाएगी। फिर 10% मिला तो अब इस 10% की अभी लाजिम नहीं है, लेकिन मजीद 10% एक महीने बाद मिला तो अब पहला 10% और ये 10% मिलकर 20% हो गया, तो अब 20% की ज़कात की अदायगी लाजिम होगी। और जो 20% की हम बात कर रहे हैं वो उस उधार का 20% नहीं बल्कि निसाब का 20% मिलता रहे तो निसाब का 20% जो है वो देखा जाएगा और उस एतबार से ज़कात की अदायगी लाजिम होती रहेगी। एक सवाल ये है कि 4 माह पहले एक हाउसिंग कॉलोनी में प्लॉट की बुकिंग करवाई लेकिन अभी तक मुझे मिला नहीं, उसकी कीमत 1,20,000 दी है मैंने, इसके अलावा 50,000 के प्राइस बॉन्ड है, क्या मैंने ज़कात देनी होगी? अब अगर आपने बुकिंग करवाई है और उसमें बेचने के लिए आपने बुकिंग नहीं करवाई, अपनी रिहाइश के लिए करवाई है, तो इस सूरत में तो उस प्लॉट के ऊपर ज़कात नहीं है। अब जो आपके पास 50,000 की प्राइस बॉन्ड है यह हाजत असलिया से ज़ायद है और इसके अलावा अगर कोई और भी इतना माल है कि वो निसाब की मिकदार को पहुंच जाता है तो ज़कात लाजिम होगी जबकि दीगर शराइत ज़कात भी पाई जाए। मजीद जो है वो हम मैसेजेस को भी शामिल सिलसिला करते हैं। एक सवाल यह है कि वालिद साहब ने छोटी बहन को कुछ रकम दी हुई है जहेज के सामान के लिए, मेरी बहन का कोई जरिया आमदनी भी नहीं, क्या इस रकम पर ज़कात होगी? जी हाँ, जब तक जहेज का सामान खरीदा नहीं है, अभी कैश की सूरत में जब पैसा मौजूद है, वालिद साहब ने अगर बहन को मालिक कर दिया है उन पैसों का तो बहन पर ज़कात लाजिम होगी, और अगर वालिद साहब ने अपनी मिल्कियत में रखा हुआ है तो वालिद साहब के ऊपर जो है वो उसकी ज़कात लाजिम होगी जबकि वो रकम 52.5 तोला चांदी की मालियत के बराबर या इससे ज़ायद को पहुँचती हो। जी कॉल्स की तरफ बढ़ते हैं। जी कॉल दीजिए।
मसला है कि ये रमजान के अंदर 10 या 20 औरतें इकट्ठी होके नमाज पढ़ती है सलात तस्बीह, ये पढ़ना औरतों के लिए साफ में जायज है या नहीं?
जी मजीद कॉल।
मुफ्ती साहब, मुझे आपसे ये सवाल पूछना था कि अगर हमारे पास 2 या 3 तोले सोना पड़ा हुआ है जो मेरी वालदा साहब पहनती हैं, तो हमारे पास पैसे नहीं है नेट के अंदर, तो हमारे पास शरी तौर पे हमारे पास क्या हुक्म है कि हमें हम पे ज़कात फर्ज है कि नहीं है? कैसे अदा करें हम ज़कात? हमारे पास नेट में कोई कैश में ज़राए नहीं है हमारे पास कमाने के।
जी मजीद कॉल।
मुफ्ती साहब के बारगाह में हमारा ये सवाल है, ज़कात ईद के बाद भी रमजान के बाद भी दे सकते हैं? और ये भी सवाल है, अभी जो फितरा बनेगा रमजान का, अभी हम तो अरब शरीफ में रहते हैं, अभी अफजल कैसा होगा? इधर देना अफजल है और कभी हमारा गांव जो है गांव में देना अच्छा है?
जी, पहला सवाल कि रमजान में औरतें जमा होकर सलात तस्बीह पढ़ती हैं, ना सिर्फ रमजान में बसा औकात बाज बड़ी रातों में भी पढ़ती हैं, तो ये कैसा है? औरतों का इस तरह जमात के साथ नमाज पढ़ना कि औरत ही इमाम हो ये जायज़ नहीं है, तो औरतों को सलात तस्बीह का तरीका सीख लेना चाहिए। सलात तस्बीह का तरीका अमीर अहले सुन्नत की किताब मदनी पंचसूरा में भी मौजूद है, उससे भी आप देख सकते हैं। تو وہ طریقہ سیکھ لیں لیکن پڑھیں اپنی اپنی علیحدہ طور پر. جماعت عورتوں کا قائم کرنا یہ جائز نہیں ہے. بعض جگہوں پہ جماعت نہیں کرتی لیکن وہ ایک پڑھ رہی ہوتی ہے بقیہ اسی کو فالو کر رہی ہوتی ہیں, تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے. اپنی اپنی علیحدہ علیحدہ زاد التسبیح جو ہے وہ ادا کریں. یوں ہی اور بقیہ نمازیں بھی, چاہے وہ صلاۃ التسبیح ہے, دیگر نوافل ہیں, تراویح ہیں, تو عورتوں کے لیے جماعت کا حکم نہیں ہے, ان کی جماعت جائز نہیں ہے کہ ان وہ خود ہی جو ہے وہ عورت اس کے اندر امام بنے. دوسرا سوال یہ ہے کہ بہت ساری خواتین وہ ہیں کہ ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سونا تو ہے 2-3 تولہ لیکن ہم زکوٰۃ کیسے ادا کریں, ہمارے پاس کیش نہیں. سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیے, سونے کا نصاب ہے 7.5 تولہ. اگر کسی شخص کے پاس سونا ہے اور چاندی ایک رتی برابر نہیں اور پیسہ بھی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اضافی حاجت اصلیہ سے زائد اور مال تجارت پرائز بانڈ کچھ بھی نہیں, فقط سونا ہے اس کی ملکیت میں اور کچھ بھی نہیں, اور سونا نصاب سے کم ہے یعنی 7.5 تولہ سے کم ہے, 3 تولہ ہے, 2 تولہ ہے, 4 تولہ ہے, 5 تولہ ہے, ایون 7.25 تولہ ہی ہو, تو اس سونے کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. مگر عموماً ایسا ہوتا بھی نہیں کہ سونا ہو اور ساتھ میں کچھ اور نہ, کچھ نہ کچھ پیسے حاجت اصلیہ سے زائد ہوتے ہی ہیں, چند روپے ہی ہوں. تو جب سونے کے ساتھ چند روپے پلس ہو جائیں گے تو جب وہ نصاب سے کم ہوں گے, کون سے, سونا نصاب سے کم ہے, تو بغیر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور اس کے ساتھ اس کے پاس مثلاً 100 روپے جو ہے وہ اضافی حاجت اصلیہ سے زائد ہیں, تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی, کیونکہ سونا نصاب سے اپنے نصاب سے تو کم ہے لیکن پیسوں کے ساتھ مل کر اب یہ کنورٹ ہو جائے گا نصاب چاندی کی طرف. جب چاندی کے نصاب کی طرف ہم کنورٹ کریں گے تو یہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت سے کہیں زیادہ اس کے پاس جو ہے وہ مال پایا گیا, لہذا اس صورت کے اندر زکوٰۃ دینی لازم ہوگی. اب اگر کیش نہیں ہے تو کیا کریں, اگر آپ کسی سے قرض لے سکتے ہیں تو قرض لے کر زکوٰۃ ادا کر دیجیے, ورنہ اس سونے کو بیچ کر زکوٰۃ ادا کریں, یا سونے کا ہی کچھ حصہ زکوٰۃ میں, کچھ گرام جتنی بھی زکوٰۃ بنتی ہے اتنے گرام آپ جو ہے وہ کسی مستحق کے زکوٰۃ کو دے دیں. تو زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہے, اس کی ادائیگی کے لیے کیش ہونا یا ذریعہ آمدن ہونا ضروری نہیں ہے, بلکہ آپ اس سونے میں سے ہی زکوٰۃ کی ادائیگی کر سکتے ہیں, بلکہ اگر کچھ اور ذریعہ نہ ہو تو پھر اسی میں سے کرنی ہوگی تاکہ بر وقت زکوٰۃ کی ادائیگی ہو سکے. ہاں, کوئی شخص سونے زکوٰۃ سے ادا کرتا رہا, حتیٰ کہ اب اس کے پاس اتنا سونا بچ گیا کہ وہ نصاب کی مقدار کوئی نہیں ہے اور اس کے پاس اور بھی کوئی مال نہیں ہے, تو ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں رہے گی. تیسرا جو ہے وہ سوال کہ رمضان کے بعد بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. یہ وہ ایک غلط فہمی ہے جو لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ زکوٰۃ رمضان میں لازم ہوتی ہے, حالانکہ زکوٰۃ کے وجوب کا تعلق رمضان المبارک کے ساتھ نہیں ہے, بلکہ زکوٰۃ سال پورا ہونے پر لازم ہوتی ہے. جو شخص جس اسلامی مہینے کی جس تاریخ کو صاحب نصاب ہوا, آئندہ سال اس اسلامی مہینے کی اسی تاریخ کو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی, تو لہٰذا اس کا رمضان سے تعلق نہیں. ہاں, اگر کوئی رمضان میں ہی صاحب نصاب ہوا ہے تو ٹھیک ہے, اس پر رمضان میں ہی زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی, اور جو جس تاریخ کو زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی, آپ کا سال پورا ہوگا, اس سے لیٹ کرنا بلا عذر شرعی یہ جائز نہیں ہے, وہ گناہگار ہوگا. تو لہٰذا اگر آپ پر زکوٰۃ رمضان سے پہلے لازم ہے تو رمضان سے پہلے ادا کیجیے, اگر زکوٰۃ رمضان کے بعد لازم ہے تو ٹھیک ہے, آپ بعد میں بھی ادا کر سکتے ہیں, لیکن اگر لازم پہلے ہے اور آپ کو ہیں کہ میں ادا بعد میں کروں گا, تو یہ بلا عذر شرعی ایسا کرنا جائز نہیں ہے. جہاں تک بات رہی صدقہ فطر کی, تو صدقہ فطر جو ہے وہ رمضان المبارک کے اندر بھی دیا جا سکتا ہے اور اس سے پہلے بھی جو ہے وہ دے سکتے ہیں. ہاں, ماہ رمضان کے اندر دینے کی فضیلت زیادہ ہے کہ وہاں پر فرض کا ثواب جو ہے وہ 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے, نفل کا ثواب جو ہے فرض کے برابر ہو جاتا ہے, تو بالکل دے سکتے ہیں. اور فی الوقت بھی اگر کوئی دیکھتا ہے کہ لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے, لوگوں کو کھانے پینے کے جو ہے وہ نہیں ہے, تو اس صورت کے اندر ان اچھی نیتوں کے ساتھ مسلمان کی خیر خواہی کے ساتھ دے گا تو انشاءاللہ عزوجل اس کا بھی اس کو ڈھیر سارا اجر و ثواب حاصل ہوگا. مزید بھی ہم میسج شامل کرتے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ کیا مستحق کے زکوٰۃ کو بتا کر دینی چاہیے زکوٰۃ؟ جی نہیں, مستحق کے زکوٰۃ کو بتا کر دینا ضروری نہیں ہے, بلکہ بہت سارے وہ سفید پوش ہیں کہ اگر آپ انہیں زکات بتا کر دیں گے تو وہ شاید نہ لے منع کر دیں. تو لہٰذا اگر آپ کو اس بات کا غالب گمان ہو گیا ہے کہ یہ مستحق زکات ہے ہاشمی نہیں ہے تو آپ اسے زکات دے دیجیے, عیدی کہہ کر, تحفہ کہہ کر یا اور کچھ کہہ کر جو ہے وہ آپ زکات دے دیں. بلکہ بعضوں کو شاید زکات کی رقم دینے کا مسئلہ ہوتا ہے, تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے علم میں ہے ان کو کس چیز کی حاجت ہے تو انہیں وہ چیز خرید کر جو ہے وہ دے دیجیے. تو مختلف زکات کی ادائیگی کے جو ہے وہ طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں, اور وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس میں سامنے والا فرد جسے آپ ادا کر رہے ہیں اس کی عزت نفس جو ہے وہ پامال نہ ہو, اس کا خیال بھی رکھیں اور اس کو اس طرح دیں کہ اسے جو ہے وہ شرمندگی جو ہے وہ نہ ہو اہل محلہ کے سامنے, دیگر لوگوں کے سامنے, ایون آپ کے سامنے بھی, کہ اسے یہ بھی نہ پتا ہو کہ یار یہ میرے کو اپنی زکات دیتے ہیں, یوں بھی نہ ہو. بہت سارے بزرگان دین رحمہم اللہ کا صدقہ کرنے کے اندر طریقہ بڑا ہی پیارا ہوتا تھا کہ وہ اس طرح صدقہ کرتے تھے کہ اپنے دائیں ہاتھ سے دیتے تھے تو بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہوتا تھا. کتابوں میں یہاں تک آیا کہ بعض بزرگ اپنے صدقات نابینا لوگوں کو دیا کرتے تھے تاکہ وہ پہچان ہی نہ سکیں کہ ہم کون, یعنی زکات دینے والے کو پہچان نہ سکیں. یوں ہی بعض جو ہے وہ کسی کی گٹھری کے اندر, پتہ تھا مستحق زکات ہے, اس کی گٹھری میں پیسے رکھ کر جو ہے وہ چلے جایا کرتے تھے. بلکہ بعض یوں کرتے تھے کہ کبھی ڈائریکٹ زکات ادا نہیں کرتے تھے بلکہ کسی اور کے ذریعے سے ادا کرواتے تھے تاکہ مستحق کو یہ بات نہ پتہ چلے کہ فلاں حضرت نے زکات دی, بلکہ وہ اپنے آپ کو چھپایا کرتے تھے تاکہ ریاکاری جیسے مرض میں مبتلا نہ ہو جائیں. فی زمانہ ہمارے ہاں زکوٰۃ یا صدقات کی ادائیگی میں, فوٹو سیشن اور دیگر چیزوں میں, جہاں دیگر وہ جو مستحق جسے آپ دے رہے ہیں اس کا جو ہے وہ عزت نفس بھی پامال ہو رہی ہے, دوسری جانب ریاکاری کی بھی کئی صورتیں پائی جا رہی ہیں. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ صدقہ اس طرح دیں کہ سیدھے ہاتھ سے دیں تو الٹے ہاتھ کو بھی اس کی خبر نہ ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں درست طریقے سے صدقہ اور زکوٰۃ ادا کرنے کی, بر وقت ادا کرنے کی, مستحق تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھے, یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے, چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو, چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی